राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधेश्याम जय राधेश्याम राधेश्याम जय राधेश्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय श्रील प्रभुपाद की श्री वृंदावन धाम की श्री गौरंग महाप्रभु की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस 25 फरवरी को नजफगढ़ के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। कितना समय है आपके पास? तो आज 25 फरवरी है। 1950 साल में इस दिन परम पूज्य भक्तिदेव महाराज का जन्म हुआ था। ताज हिजोलिनेस भक्ति तीर्थ महाराज का आविर्भाव दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक क्रांतिकारी नेता थे वो। क्रांति का मतलब क्या होता है? जो आमतौर पे नहीं होता है। सबको विनती है सब प्रकार के म्यूजिक बंद की जाए। हमने अपना पहले बंद करके रखा है। सो क्रांतिकार का अर्थ होता है कि जो आमतौर पे नहीं होता है, उसको लोकल भाषा में कहते हैं हटके। आमतौर पे सभी लोग चलते हैं, लेकिन जो असामान्य लोग होते हैं वो क्रांतिकारी रास्ते पे चलते हैं। तो ऐसे भक्ति तीर्थ महाराज अपने जीवन में ऐसे असामान्य कार्य किए। बहुत जीवन में उन्होंने अन्याय सहन किया बचपन में, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, वर्ण द्वेष के शिकार थे, उनका रंग रंग भेद। फिर भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना पढ़ाई किया, बहुत ख्यातनाम विद्यापीठ में। तो अफ्रीकन ट्राइब्स में उनको राजा बनाया गया, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार जो भी ऐसा कार्य करता है वो भगवान का विशेष भक्त माना जाता है, राजा माना जाता है। जो उनके धर्म के अनुसार उस समाज के, उस जाति के जो राजा होते हैं, वो प्रचार कार्य भगवान में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो उन्होंने बकायदा बहुत सुंदर ढंग से उनका राज्याभिषेक किया, उनका मुकुट पहनाया, उनके वस्त्र पहनाए, और उस पारे प्रजाति के उनको राजा बनाया उन्होंने। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान था। और जो आई थिंक नेल्सन मंडेला वाज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ना, नेल्सन मंडेला जो थे वो विश्व के बहुत क्रांतिकारी नेता हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने जीवन के 27 साल जेल में गुजारे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए। वो इनके क्या कहते हैं उसको, काउंसली थे, काउंसली उनके ऑफिशियल काउंसलर थे भक्ति तीर्थ महाराज। जो व्यक्ति एक देश का नेतृत्व कर रहा है, जैसे महात्मा गांधी उस समय परतंत्र भारत का नेतृत्व कर रहे थे, कितना बड़ा देश है, वैसे अफ्रीका भी बहुत बड़ा देश है, उधर भी वही हो रहा था जहाँ पर अपना यहाँ पर हो रहा था। इसलिए महात्मा गांधी भी वहाँ पर गए थे। तो वो नेता जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, फिर उन्होंने अफ्रीका को ब्रिटिश राज से मुक्त किया, बहुत अधिक स्तर पर रंग भेद वर्ण भेद को नष्ट किया। वो जब अपने मानसिक वेदना से पीड़ित होते थे तो वो भक्तिदत्त महाराज के पास में आते, सलाह करते थे रेगुलरली। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, कोई देश का कोई प्रमुख व्यक्ति देश का आगे जाकर अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बनने के बाद भी वो इनके साथ सलाह करते थे। तो एक तरह से हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज राजगुरु बन गए, है ना। तो इस तरह से बहुत ही अनोखे तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जो आम तौर पे नहीं होता है। और भक्ति तीर्थ महाराज का कीर्तन जो था वो इतना मशहूर था, बहुत तूफानी कीर्तन करते थे। तूफान मतलब तूफान कैसे होता है, आंधी कैसे होती, ऐसा उनका कीर्तन हुआ करता था। उनके हाथ में डफली हुआ करती थी, और वो डफली कोई और पकड़ता था, और वो डफली का जो मारने का होता ना हिस्सा, क्या कहते हैं उसका हैंडल, वो मारते मारते ऐसे ही नृत्य करते थे तूफान एक की तरह, कोई उनके साथ में मैच नहीं कर सकता। तो ऐसे भक्ति तीर्थ महाराज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भी आए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। तब उनके पैर में वो काला दाग दिखाई पड़ता, वो छुपाने के लिए उसको सॉक्स पहनते थे। उन्होंने 6 महीने पहले प्रभुपाद से ऐसी प्रार्थना की थी कि मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो चाहे जरूरी है वो आप करो, चाहे कैंसर क्यों ना हो जाए, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन जो भी वॉट एवर इट टेक्स टू मेक मी प्योर डिवोटी, मुझे शुद्ध भक्त बनाने के लिए जो भी जरूरी है वो करो। और 6 महीने में उनको कैंसर हो गया। वो बताते थे हमको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में कि मैं समझ गया कि प्रभुपाद जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, मुझे ये पता नहीं था कि वो इतने जल्दी उत्तर देंगे उसका, इतनी जल्दी मुझे यह मौका मिलेगा। तो कैंसर आगे बढ़ा, दर्द आगे बढ़ा, उनके पैर को काटना पड़ा, उसका मतलब आगे कीर्तन नहीं कर सकते, है ना। जिंदगी भर तूफानी कीर्तन करने वाले व्यक्ति, नृत्य करने वाले व्यक्ति अभी नाच नहीं सकते हैं। उनका बहुत इच्छा थी उनकी कि वृंदावन में आए, अपने भारत के, और यहाँ पर शरीर छोड़े। लेकिन मेलानोमा नाम का जो कैंसर होता है वो सबसे भयंकर होता है, और वो इतने फास्ट इतने तेज़ी से बढ़ता है शरीर में कि हम यकीन नहीं कर सकते हैं। सबसे अधिक दर्दनाक, सबसे अधिक गति से फैलने वाला ऐसा कैंसर उनको हुआ था। तो फिर वो भारत में नहीं आ सके, उनकी इच्छा होते हुए भी वृंदावन में बहुत उनके आने की इच्छा थी, लेकिन वो स्थिति उनकी ऐसी हो गई कि वो उनको इतना हवाई जहाज से यात्रा करना वगैरह नामुमकिन हो गया। तो वो फिलाडेल्फिया में ही गीता नगरी में वो स्थिर हो गए, और वहाँ पर उनकी देखभाल की गई। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने अपने 7 हफ्ते का सारा कार्यक्रम कैंसिल किया और उनके साथ में रहे। तो इस बीच में एक अनोखी घटना हुई, उनका जीवन तो ऐसे ही अद्भुत अनोखी घटनाओं से भरा हुआ है, और वो हमेशा ये कहते थे कि अगर प्रचार करना है भगवान की भक्ति का तो हर समय रूटीन रास्ते से चलना ही एक ही रास्ता नहीं है, कुछ अनोखा भी करना पड़ता है। जब अनोखा कोई करता है तो उस पर बहुत टीका होती है। जैसे कि उन्होंने जो कैप पहना साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी का, उनका जब वस्त्र पहना तो उनको बहुत टीका हो गई कि ऐसा हरे कृष्ण में नहीं होता है, होता है। लेकिन उन्होंने बहुत 1000 लोगों को भक्त बनाया उसके माध्यम से। आई फास्ट नाम की उनकी संस्था थी, इसमें इतने सारे साइंटिस्ट टाइप लोग जुड़ गए थे और भक्त बने। तो जब अनोखा मार्ग कोई अपनाता है ना, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक लोगों को बहुत शंका होती है, वो कमेंट करते हैं और निंदा करते हैं उसकी। लेकिन कुछ देर बाद में उसका रिजल्ट आने लगता है, फिर लोग सभी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर सब निंदा टीका सब भूल जाते हैं। तो क्रांतिकारी व्यक्ति को ये सब तपस्या करनी पड़ती है, उसके मन में उसकी दूरदृष्टि पक्की होती है, उसको जो प्राप्त करना है वो भी उसके आंखों सामने क्लियर होता है। जो नेता होता है ना वो ऐसा ही होता है, उसको किसी को दिखाने पड़ता लक्ष्य, लेकिन उसको दिखाई पड़ते रहता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ में उसको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। जनता जो उसके साथ जा रही है उसको दिखाई नहीं पड़ता है वो कहाँ जाना है, लेकिन उसको दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तक जनता को नहीं दिखाई पड़ता है तब तक उसको बहुत निंदा का सामना करना पड़ता है। जो जनता को वो लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है फिर निंदा कम होती है और फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। ये सबका उन्होंने सामना किया बहुत। तो फिर फिलाडेल्फिया में सेटल हो गए, तो हमारी गुरुदेव उनके साथ में सेवा कर रहे थे, उनकी 7 हफ्ते तक सेवा किया। अचानक एक फोन आया हमारे गुरुदेव को 3 ब्रिजवासियों का जो बरसाने से आए। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग क्लीवलैंड में हैं तो आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरे एक गुरु भाई हैं वो एकदम अंतिम स्थिति में हैं, कि आप यहाँ आना चाहोगे उनके लिए कीर्तन करने के लिए? जरूर आएंगे बिल्कुल। तो उनको एयरपोर्ट से पिकअप करके लाया गया गीता नगरी में, और उन 3 ब्रजवासियों में से एक बहुत ही महान ख्यातनाम और मशहूर और बहुत नम्र और बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण ब्रजवासी थे और गायक भी थे, उनका नाम था मदन मोहन ब्रजवासी। वो अपने युवा अवस्था से लेकर आकाशवाणी में गाया करते थे, लेकिन वो उनका बड़ा चीज़ नहीं है, उनके हृदय का भाव और भक्ति जो थी वो उनके ख्याति से भी बहुत बढ़कर थी। तो उन्होंने जो कीर्तन किया वहाँ पर, वो कीर्तन करने मोर आ गए, वहाँ पर मोर आकर नृत्य करने लगे, और भक्ति तीर्थ महाराज इतने पराकोटि के भाव में चले गए, एक बालक की तरह जोर जोर से रोने लगे आनंद में। ऐसा वातावरण तैयार हो गया जैसे कि मानो वृंदावन प्रकट हो गया। जो वृंदावन में वो जा नहीं सकते थे, जिनको जाने की इच्छा थी बहुत, भगवान ने उसके उनके लिए वो वृंदावन वहाँ प्रकट कर दिया। इसलिए भक्त की हर एक इच्छा भगवान पूरी करता है। उन्होंने खुद भी बताया कि मैं जाना चाहता था लेकिन ठाकुर जी ने तो वृंदावन यहीं प्रकट किया। तो इस तरह से एक बहुत अनोखा अद्भुत अनुभव था। उसमें से गौरांग प्रभु शायद उधर थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भी वहाँ पर थे, सब लोगों ने इस अद्भुत दृश्य का और प्रसंग का अनुभव किया कि कैसे भगवान की इच्छा से क्या नहीं हो सकता है, और भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। सब कुछ शरीर से नहीं होता है, सब कुछ बाह्य दृष्टि से नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन जो है वो सूक्ष्म होता है, हृदय के स्तर पे होता है। शरीर अगर गटर के पास में रहेगा तो मन गवलोक वृंदावन में रह सकता है, अगर भाव हो तो। तो ये इतने श्रेष्ठ उच्च कोटि के वैष्णव थे, भगवान ने उनके लिए फिलाडेल्फिया में ब्रज प्रकट कर दिया। बड़े ही वॉज वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली, कितने रो रो के धन्यवाद दे रहे थे, भाई कितना अच्छा किया। हालांकि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन उनका जो संग था हृदय का, उसमें ब्रज के भाव का आदान प्रदान हुआ। तो यथावकाश उन्होंने कई प्रवचन दिए उस अवस्था में, डाई बिफोर यू डाई, सबसे बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनका यही है कि हमको शरीर से मरने से पहले भौतिक भाव से मरना चाहिए। भौतिक भाव का मतलब क्या है, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा शरीर है, जो सब कुछ मेरा नहीं है उसको मेरा बोलना, इस भाव से पहले मृत्यु होनी चाहिए हमारी। डाई बिफोर यू डाई मतलब शरीर मरने के पहले, शरीर छूटने के पहले ये जो दुर्भाव है हमारा माया के प्रति, उससे हमको मरना चाहिए, उसकी मृत्यु पहले होनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज की हुई, वो तो सर्प पक्षी आकर दंश करने के पहले ही वो छोड़ चुके थे शरीर को, बचा था उनका केवल शरीर जो कोई मतलब ही नहीं उसमें, तो ऑलरेडी जा चुके थे। तो सर्प पक्षी द्वारा दंश होने के शाप से वो ग्रस्त होने के पहले ही शरीर छोड़ के अंतर्धान हो गए थे वो। फिर एक विधि विधान के अनुसार सर्प पक्षी आया, वो दंश किया उनको, शरीर गिर गया, उसके पहले ही उनकी आत्मा गौलोक जा चुकी थी। तो ये जो भावना है कि हमारा जो भौतिक दुनिया से आसक्ति है वो मृत्यु तक वेट नहीं करना चाहिए टूटने के लिए, उसके पहले ही टूटना चाहिए, तब जाकर मृत्यु हमको भगवान के पास ले जा सकती है। अगर मृत्यु के समय तक हमारी आसक्ति हमको खींचकर पहुंचानी है वहां तक, तो फिर भी वो द्वंद्व हो सकता है, हम पर कहाँ जाना है अभी, क्योंकि आसक्ति साथ में लेके जा रहे हैं ना। तो डाई बिफोर यू डाई का मतलब है कि वो सब आसक्तियों से हमारी मृत्यु बहुत पहले होनी चाहिए, तब जाकर कृष्ण से प्रेम की यात्रा शुरू हो जाती है। ये हमको समझना बहुत जरूरी। तो यथावकाश फिर जब समय आया तो भगवान का नाम लेते हुए, गिरिराज की शिला सर पे रखे हुए, हाथ में शालिग्राम शिला लेते हुए, गुरु भाई के संग में, भक्तों के संग में बहुत दिव्य रूप से उनका प्रयाण हुआ और भगवत धाम चले गए। एक हमारे इस्कॉन संस्था का चमकता हुआ सितारा थे वो, वेरी शाइनिंग स्टार ऑफ प्रभुपास मोमेंट, और एक आदर्श खड़ा किया कि अनोखापन होने में किसी को डरना नहीं चाहिए। थोड़ा आवाज़ कम करो जरा। अनोखापन होने में कोई अपने को संकोच नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए व्यक्ति को। जो दूरदृष्टि वाले नेता होते हैं उनके सामने लक्ष्य बहुत क्लियर होता है, और वो उस लक्ष्य तक प्राप्त करने, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले रास्ते में आने वाली असुविधाओं और संकटों से डरते नहीं है वो। दे डोंट गेट स्कैर्ड विथ द चैलेंजेस विच विल कम ऑन द वे। तो उनका एक मूर्तिमान उदाहरण थे भक्ति तीर्थ महाराज, उनका किताब है ब्लैक लोटस, बहुत सुंदर किताब, बहुत सुंदर। उनका आत्मचरित्र है, उनका चरित्र किसी और ने लिखा है, स्टीवन रोजन, सत्यराज खान प्रभु ने, बहुत ही सुंदर। जैसे जर्नी होम किताब है ना, उसी दर्जे की वो भी किताब है ब्लैक लोटस, बहुत सुंदर। तो आज हम उनके परम स्मृति को अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं उन्हें, प्रार्थना करते हैं कि उनका जो निश्चय था क्रांतिकारी रूप से प्रचार करने का, उतना निश्चय और उतनी श्रद्धा हमें भी प्राप्त हो जाए कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। आप लोगों को सुनकर बड़ी खुशी होगी कि वो रोज 42 माला जप करते थे, 42 राउंड्स एवरी डे। उनके इतने बिजी शेड्यूल में भी वो उतना जप करते थे। जब वो बहुत बीमार हो गए तो उनको एक एक माला करने में बहुत टाइम लगता था, फिर भी उन्होंने दिन में कई घंटे जप करके वो मालाएं पूरी करते थे अपनी। हम लोग कैसे अभी आज रहा है 9 बज गए, अभी कल करेंगे बच्चे भी माला, तो बहुत थक गए अभी आज। वो इतना बीमार व्यक्ति, इतना परेशान, इतने पीड़ित, फिर भी अपनी माला जो है उनको बोलने में भी बहुत कष्ट होता था, इतना परेशानी थी उनको। फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी भी प्रभुपाद जी का आदेश 16 माला का कभी छोड़ा नहीं, मुझे करना है उसको। इतना समर्पण रहेगा तो क्यों भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाएंगे। इतना समर्पण है इतनी कठिनाइयों में, ये उसके मूर्तिमान उदाहरण थे, समर्पण प्रभुपाद जी के प्रति। ये भगवान को ढूंढे ढूंढे एक बार महर्षि योगी के पास में गए थे, महर्षि योगी के पास, और महर्षि योगी ने उनको साफ साफ बताया था कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपके गुरु हरे कृष्ण संस्था के प्रमुख प्रभुपाद जी हैं। तो उनको खुद आश्चर्य हुआ था, हरे कृष्ण संस्था मेरे गुरु, वाज वेरी अमेज्ड। पर उन्होंने निश्चित रूप से कहा था कि आप उनके पास जाइए, आप उनके शिष्य हैं, वो आपके चिरंतन गुरु हैं। और वो उनको अनुभूति हुई जब प्रभुपाद जी को मिले तो उनको लगा कि हाँ यही आत्मा मेरी गुरु है, यही जो व्यक्ति है, दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। बहुत अद्भुत है उनके जीवन के अनुभव। एनीवेज हम सब उनको आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम भी उनकी तरह अपने जीवन अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज की जय हो। तो आज का हमारा विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन की भेंट, है ना, यही बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव बहुत नजदीक आ रहा है, तो इसलिए उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चर्चा करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना बहुत ही शुद्ध पवित्रकारी है, पवित्र करने वाला है अपने जीवन को। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही अद्भुत अवतार है भगवान का, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान के रूप में आते हैं, भले अंशार अंश अवतार हो लेकिन अवतार भगवान के रूप में। पृथ्वी महाराज भी शक्त्यावेश अवतार थे और हर समय अपनी चमत्कारी शक्तिशाली लीलाओं को दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा अद्भुत अवतार था उनका कि वो स्वयं भक्त बनकर आए। भगवान भक्ति को सिखाने के लिए खुद भक्त बनकर आए, और जिन्होंने भी उनको भगवान भगवान पुकारा उन्होंने विष्णु विष्णु करके कान बंद कर दिए। कुछ कुछ जगह पे दिखाया भगवान है, आमतौर पर कई प्रकार के उद्देश्यों से आए थे वो। एक तो उनको स्वयं परम ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको ये पता करना था कि मेरी भक्ति करने के बाद मेरे भक्तों को क्या आनंद मिलता है, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको कैसे पता कि जो भक्ति कर रहे हैं उसको क्या आनंद मिलता है, पति को कैसे पता चले कि पत्नी जो मेरी सेवा करती है उस सेवा में उसको क्या आनंद मिलता है। वो तो सेवा करने वाले में सेवा लेने वाला हूँ, तो सेवा करने वाले को सेवा लेने वाले से बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। सेवक का ये बहुत, ऐसे कहते हैं सेवक भगवान से भी बड़ा है, भगवान का सेवक, क्योंकि भगवान से भी अधिक भावनाओं का अनुभव वो करता है, दिव्य भावनाओं का। इसका मतलब भगवान से बड़ा नहीं होता है वो, क्योंकि भगवान ऐसा मानते हैं कि मेरा सेवक मुझसे बड़ा है, नहीं तो वो क्यों बन के आते सेवक उनका। क्योंकि वो देख रहे थे राधा रानी को और भक्तों को और गोपियों को कि इन सब लोगों को मेरी सेवा करके मुझे जितना आनंद मिलता है उनकी सेवा लेकर उससे भी कई गुना आनंद इनको प्राप्त होता है, ये उसका देख रहे थे उनको। तो उनको ऐसा लगा कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो इन सब लोगों को मेरी ओर इतनी आकर्षित कर देती है, और वो क्या आनंद है जो उनको मिलता है जो मेरी सेवा करने के बाद। वो उनका अंदर का उद्देश्य था जिसके लिए उन्होंने भक्त का स्वरूप लिया, और बाह्य उद्देश्य ये था कि वैसे ही भी कलयुग आ गया था ऑलरेडी, और कलयुग के सब जीव बहुत परेशान रहते हैं, झगड़ा करते हैं कि आयु कम होती है बहुत और बुद्धि कम होती है, मंद होते हैं, उनका सब विचारधारा आलस्य में भरा रहता है, सब आलस्य करते हैं, हर बात पर झगड़ा करते हैं, ढोंग करते हैं, बहुत पतित अवस्था है। तो इनके पास कोई ज्ञान बड़ा प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, तपस्या करने की कोई इच्छा भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, कुछ त्याग नहीं कर सकते, कोई बड़ी पद्धति नियमावली फॉलो नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग बहुत कमज़ोर है, आलस्य बहुत ज़्यादा है। कुछ भी करने के लिए सबसे बड़ा अरे बाप रे ये कौन करेगा, ऐसा प्रश्न पहले आता है। तो ऐसी पतित अवस्था में इनको क्या बताया, जंगल में जाओ सब कुछ छोड़ के तपस्या करो, नहीं कर सकते, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो विरक्त हो जाओ वो नहीं कर सकते, पैसा छोड़ो परिवार छोड़ो संन्यास लो नहीं कर सकते, तो क्या करें क्या, यज्ञ करो तो नहीं, यज्ञ भी नहीं कर सकते, साधन ही नहीं है, कोई घी नहीं मिलता इधर, लकड़ी गंदी होती है, हाँ मंत्र बोलने को नहीं आता है, क्या करें क्या, यज्ञ नहीं कर सकते, कर्मकांड नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे क्या फिर ये लोग, बस मेरा नाम ही उनको बचा सकता है। तो भी वो नाम को भी अगर प्रचार करना है तो ऐसा प्रचार करना चाहिए कि लोग सुनना चाहिए उसको, इसलिए उन्होंने ये अवतार लिया, बहुत दिव्य अवतार लिया और अपने नाम का प्रचार किया, और ये नाम का प्रचार करते हुए भी उनको कष्ट हुआ तो उन्होंने फिर संन्यास ले लिया, ना बड़ा त्याग किया, उनकी देवताओं से भी श्रेष्ठ उनकी पत्नी थी, उससे भी श्रेष्ठ माता थी उनकी, ऐसे माता और ऐसे पत्नी को कौन छोड़ सकता है, पूरी भगवान की सेवा में रत है, अपने जीवन पूरा समर्पित है भगवान की सेवा में, और कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। श्रीवास पंडित जैसे भक्त थे उनके गृहस्थ, मुरारी गुप्ता जैसे भक्त थे, इनको छोड़ के कोई संन्यास ले सकता है क्या, लेकिन फिर भी उनके मन में विश्व के पतित लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा करुणा थी, जितना उनको अपने परिवार पर अपने भक्तों पर निकट के लोगों पर प्रेम था। जो लोग समर्पित ऑलरेडी थे वो तो अच्छा ही है, लेकिन जग में जितने लोग पतित हैं उनका क्या होगा, ये सोचकर उन्होंने अपना सुंदर भक्तों का परिवार और सुंदर निजी परिवार को त्याग दिया उन्होंने, और संन्यास लेकर वो निकले प्रचार करने के लिए, और जगह जगह पर संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने प्रचार किया, जगन्नाथपुरी गए, झारखंड गए, जितना मनुष्यों को प्रचार किया उतना जानवरों को भी उन्होंने अति आनंद में मशगूल कर दिया। झारखंड में गए तो हाथी हिरन सिंह शेर जंगली जानवर, हाँ भेड़िया, इस प्रकार के खूंखार जानवर जो बहुत भयंकर होते हैं, उन लोगों से हरिनाम बुलवाया उन्होंने। आज भी आप झारखंड जाओगे तो आपको उन जानवरों के और भगवान के पद चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि जब भगवान वहाँ पर लीला कर रहे थे हरिनाम संकीर्तन की, तो भूमि भी दोलायमान कंपायमान हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, पिघल रही थी, तो उस अनोखे हरिनाम संकीर्तन में जब जानवर भी नाच रहे थे हरिनाम को पुकारते हुए, तो भूमि पिघल रही थी तो सबके चरण चिन्ह वहां पर निर्माण हुए। इतनी बड़ी कृपा ऐसा किसी अवतार ने आज तक नहीं किया है। श्री कृष्ण का स्वयं आना ये भी बहुत अद्भुत बात है जो श्री कृष्ण करते हैं। गिरिराज जी को उठाया उन्होंने, पुतना को उसका स्तन चूस के मार डाला, हाँ बैलगाड़ी वाले राक्षस को मारा, तृणाव्रत को अद्भुत तरीके से मारा, कालिया के ऊपर नृत्य किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। सब लोग जमीन पर नाचते हैं, स्थिर भूमि पर, कोई अस्थिर भूमि पर नाचता नहीं है, तो ऐसा अद्भुत नृत्य दिखाया। फिर भी इतने अद्भुत लीला करने वाले कृष्ण से भी अद्भुत लीला गौरांग महाप्रभु ने किया। कृष्ण की लीला में ऐसा कभी सुना नहीं पड़ता कि गले मिले हाथी और शेर और हरिनाम संकीर्तन किया, लेकिन महाप्रभु जी की लीला में करुणा जो है वो ज़्यादा है, औदार्य, और कृष्ण भगवान की लीला में माधुर्य और चमत्कार है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की लीला में औदार्य जो है वो बहुत प्रधान है। औदार्य का मतलब सब कुछ छोड़कर पतित जीवों के प्रति जो करुणा है वो सबसे प्रधान है उनके व्यक्तित्व में, जैसे उनको औदार्य अवतार कहते हैं। इसलिए उन्होंने सब जानवरों का उद्धार किया जो भी उनको मिले, जो भी संपर्क में आए, जो भी जिन्होंने भी उनको देखा, उनके मुंह से जो वाणी जिनको नहीं है, वाचा नहीं है जिनको, उनके मुंह से हरिनाम संकीर्तन उन्होंने करवाया। तो इस तरह से महाप्रभु जी का जो गौरव है वो जनता को पता होना चाहिए कि महाप्रभु जी ने इतने भयंकर कलयुग की अवस्था में होते हुए भी इतनी श्रेष्ठ जो भेंट है वो लोगों के दी। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत ही भयंकर और बहुत पतित है, किसी के किसी वस्तु को देने के योग्य नहीं है। मतलब ना कर्मकांड कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना त्याग कर सकते हैं, ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना कुछ भजन कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं करने वाले लोग हैं। ऐसे भयंकर अवस्था में उन्होंने जो किसी युग में नहीं दिया भेंट वो उनको दे दिया। इसको कहते हैं विरोधाभास, मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट है ये। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी किसको देते हैं, जो ऑलरेडी मास्टर डिग्री ले चुके हैं उनको पीएचडी देते हैं, जो स्कूल में गया है ना उसको थोड़ी देते पीएचडी। तो उन्होंने ऐसा किया, जो लोग स्कूल में भी नहीं गए हैं भक्ति वाले उनको भक्ति का पीएचडी दिया उन्होंने, डॉक्टरेट दे दिया पूरा, कृष्ण प्रेम दे दिया। जो पतित से पतित हैं, जो पाप में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं, उनको आध्यात्मिकता का गंध भी नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, केवल कर्मों की मुक्ति नहीं दिया, पाप मुक्ति नहीं दिया। पाप मुक्ति तो एक मुकाम है भक्ति के मार्ग का, पाप मुक्ति ये अंतिम लक्ष्य नहीं हमारा। पाप मुक्ति जीरो, शून्य स्थिति में आना मतलब पाप मुक्त होना, उससे कुछ नहीं होता है। वापस आप उसमें से क्या बाद में गिर सकते हो, दोबारा शराब पी सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं कुछ। लेकिन पाप मुक्ति के साथ साथ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना, कृष्ण प्रेम में डूब जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो विरोधाभासी चमत्कार है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। और ये जो बात है कि बहुत ही बहुत विपरीत स्थिति में सर्वोच्च भेंट को देना, ये महाप्रभु का जो दिव्य कार्य है इसको प्रकाशित करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने तय किया कि मैं जगाए मधाई को भक्त बनाऊंगा, क्योंकि इससे ये जो विरोधाभास है ये बहुत प्रकट दृष्टि से एकदम उज्ज्वल तरीके से लोगों के सामने आएगा। अगर ये लोग भक्त बनेंगे तो महाप्रभु जी का जो कृपा है वो कितनी गहरी है और कितनी महान है इसका लोगों को परिचय होगा, और फिर ढेर सारे लोग भक्त बनेंगे। ये निश्चय से नित्यानंद प्रभु ने ये लीला करवाई। महाप्रभु जी का सर्वोच्च गौरव जो है वो लोगों के सामने प्रकट करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने जगाए मधाई के सामने रिस्क ले लिया। उनकी महानता भी है लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, अपनी महानता को प्रकट करने का उनका उद्देश्य नहीं था, महाप्रभु जी का कृपा कितना महान है इसको प्रकट करने का उनका उद्देश्य था। एक तरफ से नित्यानंद प्रभु की परम करुणा प्रकट हो गई उससे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी क्या प्रकट करना चाहते थे उसमें, महाप्रभु जी की करुणा, ऐसा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु अपने लीला करते हुए 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, उसके पहले 6 साल भारत भर भ्रमण किया उन्होंने, और जगन्नाथपुरी से उनको हमेशा वृंदावन जाने की इच्छा थी, हमेशा के लिए। लेकिन उनके भक्त कैसे थे, उनके संग को छोड़कर जाना उनको मुमकिन नहीं था, ये कल्पना भी उनको सहन नहीं होती थी कि अरे बाप रे अभी जाएंगे। तो कहते थे महाप्रभु जी अरे अभी तो ढोले यात्रा आने वाली है, अरे अभी तो ओढ़न षष्ठी आएगी, अरे अभी तो रथ यात्रा आने वाली है, अरे अभी तो वापसी की रथ यात्रा भी होने वाली है, अरे उसके बाद में ये उत्सव होगा, अरे उसमें जन्माष्टमी आएगी। एक साल बीत गया फिर भी बोलते अरे वो दूसरा भी उत्सव आने वाला है। फिर महाप्रभु जी की उत्कंठा बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। फिर एक बार वो निकले जाने के लिए, तो निकले तो लोग भी जाने लगे उनके साथ में, पूरी जनता जा रही है। तो मेरे ख्याल से सनातन गोस्वामी ने उनको बताया या किसी भक्त ने बताया उनको कि ऐसे वृंदावन जाना नहीं होता है, अकेले जाना चाहिए, एक भक्त ले ठीक है, लेकिन पूरी जनता, मतलब क्या मतलब उसका हुआ, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि एकांत में जाना चाहिए, उनके कहने का कि अपने अनुयायियों का इतना भार लेके गौरव के साथ वृंदावन जाना नहीं चाहिए। अभी समझो आपके साथ 50 लोग गए, मतलब आप नेता बन गए ना उनके, तो वो भाव से नहीं जाना चाहिए, तो नम्र होकर जाना चाहिए। तो वो लौट के आए और एक दिन गुप्त रूप में चले गए, उन्होंने केवल दो चार भक्तों को बताया कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने उनको बताया कि आप जा रहे हो, लेकिन मैं जानता हम जानते हैं कि आप तो वृंदावन जाएंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे, कहीं गिरेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं चोट लगेगी, नदी में गिरेंगे, रास्ता में गिरेंगे, तो भोजन भी चाहिए ना आपको, कोई संभालने वाला भी चाहिए आपको। यहाँ पर भी आप गिर जाते हो, अदृश्य हो जाते हो, कहीं गिर जाते हो पानी में, समुद्र में। तो उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य को चुना कि एक ब्राह्मण तो आपके पास होना चाहिए भोजन करने के लिए, और वो एक आदमी चाहिए आपको आपके कपड़े वड़े देने के लिए, क्योंकि आप एक हाथ से ऊपर करते हो, दो हाथ से गिनती करते हो, तो कपड़ा किस हाथ से पकड़ोगे? तो दो आदमी को राजी हो गए वो लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले वो निकले वहाँ से, झारखंड में गए, जानवरों का उद्धार किया उन्होंने। उसके बाद में वो त्रिवेणी संगम गए, वहाँ पर त्रिवेणी में स्नान किया, और उसके बाद में वो मथुरा आए। शास्त्र में लिखा है कि जगन्नाथपुरी में रहते हुए उनको बहुत भगवान के भावना में भाव विभोर होते थे, वो उससे 100 गुना अधिक भाव विभोर वो वृंदावन की ओर जाते हुए हुए। ऑन द वे टू वृंदावन, थिंकिंग ऑफ वृंदावन के मैं वृंदावन जा रहा हूं। जब मथुरा पहुंचे तो कहते हैं कि और 100 गुना उनकी भाव विभोरता बढ़ी, 1000 times more। और जब एक्चुअली वृंदावन में भ्रमण किया उन्होंने तो कहते हैं 1,000,000 times more ही वॉज एक्सपीरियंसिंग ecstasy। जगन्नाथपुरी इंटू 100 ऑन द वे, इंटू 100 आफ्टर मथुरा, इंटू 100 आफ्टर एंटरिंग इंटू वृंदावन। तो मथुरा में गए तो उन्होंने मथुरा में जाते ही जमुना जी में स्नान किया। जमुना जी को देखते ही पहले वो बेहोश हो गए, मथुरा आए और मथुरा पहुंच गए ये भावना से ही पहले बेहोश हो गए। जमुना जी ने स्नान किया, वहाँ बेहोश हो गए, फिर उन्होंने विश्राम किया, फिर वहाँ पर संकीर्तन किया। और संकीर्तन में कई लोग आए, तो उसमें एक सनोड़िया ब्राह्मण आया। उसका मतलब क्या होता है, उसकी कास्ट ऐसी थी ब्राह्मण की कि वो शुद्ध वैश्यों में से भी जो निचले वैश्य होते हैं उनके घर में ब्रह्म कर्म करते हैं, शादी गृह प्रवेश जो भी अग्निहोत्र जो करने होते हैं वो ब्राह्मण के लिए नहीं करते, वो उनकी कास्ट ऐसी होती है कि केवल वैश्यों में जो भी सब लोअर वैश्य हैं उनके लिए वो ये कार्य करते हैं। तो ये ब्राह्मण उनके संकीर्तन में आया और बहुत अद्भुत नृत्य किया उसने। तो जब नृत्य समाप्त हुआ तो नृत्य में तो वहाँ पर वो उनको देख रहे थे कि बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, बहुत विशेष उनका भाव था। तो पूछा, आप कौन हो, क्या परिचय आपका? तो उन्होंने कहा कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। ये सुनकर तुरंत महाप्रभु ने उनको दंडवत किया। तो उनका दंडवत देखकर बहुत ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, अरे मैं तो इतना निचले प्रकार का व्यक्ति हूँ और आप तो भगवान हो स्वयं, मतलब उनको पता नहीं था एक्चुअली, लेकिन ऐसी अनुभूति हो रही थी कि आप इतने महान हो और मैं कैसे सन्यासी हो ऊपर से, मैं तो गृहस्थ हूँ। तो फिर भी महाप्रभु ने दंडवत किया उनको, तो वो संकोचित हो गए वो। तो बलभद्र ने कान में समझाया कि माधवेंद्रपुरी इनके गुरु के गुरु हैं, तो आप इनके गुरु के गुरु भाई हैं, इसलिए आपको गुरु भाव से देख रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। तब उनको समझ में आया। तो महाप्रभु भी बोले कि जब आपका नृत्य मैंने देखा तो मुझे भी ये मन में विचार आ रहा था कि आपका कहीं ना कहीं माधवेंद्रपुरी से संपर्क होगा शायद, ये उनको मन में अनुभूति हो रही थी। जब आपने बताया कि हाँ मैं उनका शिष्य हूँ तो मैं समझ गया, हाँ इसलिए आपका ये विशेषता है आपके प्रेम में और आपके नृत्य में। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे आइए प्रसाद लेने के लिए। नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि मैं आपके घर पे आके प्रसाद लेना चाहता हूँ। महाप्रभु चैतन्य ने खुद बोला उनको। तो वो कहते हैं कि मैं निचले जाति के वैश्यों के घर में सेवा करने वाला ब्राह्मण हूँ, उच्च कोटि का नहीं हूँ। आप तो जन्म से ब्राह्मण भी है और आप सन्यासी भी है, आप इतने महान भक्त हैं, तो मेरे घर पे आप प्रसाद पाएंगे तो आपकी भक्ति में बाधा आ सकती है। आप आ सकते हो मेरे घर पे, लेकिन एक काम करो, आप मेरे घर पे आए और बलभद्र भट्टाचार्य जो ब्राह्मण है उनको आप मेरे घर पे प्रसाद बनाने को बोलना, आप मैं मेरा किचन दूंगा आपको, करिए। तो महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही वहाँ पर। महाप्रभु जी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी के चरणों का अनुकरण मतलब आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो हर समय में महान है। जो व्यक्ति माधवेंद्रपुरी के आदेशों पर चलने वाला है वो हर समय महान है। उसके घर पे प्रसाद पाना उसके हाथ से मेरा गौरव है, इसमें कोई जाति भेद रंग भेद वर्ण भेद नहीं होता है। इसलिए भगवान ने अट्टहास करके उसी के हाथ से ही उसके घर में प्रसाद पाया। फिर उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में घूमोगे, मैं आपके साथ में आऊँ क्या? बोला आ जाओ। तो पहले दो थे, वो तीसरा हो गया। फिर वो आगे बढ़े वृंदावन की ओर। जब वहाँ से वृंदावन की ओर आगे बढ़े तो उनके रास्ते में बहुत सारी गायें इकट्ठा हो गई, ऐसे मुंह काटा, मुंह ऊपर करके बड़ी बड़ी आंखें, जबान निकाल के पूरा चाट रही है भगवान के शरीर को, कि पूछ उठे ऊपर उठी हुई है, वो ऐसे कांप रहे हैं आनंद से, आंखों से आंसू रहे गाय के, और चारों दिशाओं से उनको चाट रहे, छोड़ ही नहीं रहे। ग्वाला परेशान, वो कोशिश कर रहा है खींचने का, लेकिन ये तो और संख्या में उनको चिपक रहे हैं। और जो प्राणी जो जैसे आमतौर पर मनुष्यों के पास नहीं आते, जैसे हिरण है, वो शर्माते हैं, वो दूर दूर से भाग जाते हैं, वो डरते ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास अधिकतर नहीं आते वो। सारे हिरण भी इकट्ठा हो गए उधर, हर प्रकार के जानवर जो होते हैं वो सब इकट्ठा हो गए उधर, पंछी गाने लगे, मोर आ गए उधर, तोता मैना चंद्र चक्रवाक पक्षी और सारस पक्षी जो गोस्वामी जी वर्णन करते ना, हर प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी वहां इकट्ठा हो गए और अपना किलबिलाट करने लगे महाप्रभु जी के आसपास। बहुत मुश्किल से ग्वाले ने गायों को छुड़ाया, उनको रास्ता क्लियर किया उनका, फिर भी गाय भाग रही थी उनके पीछे पीछे। अचानक मोर प्रकट हो गए और वो जोर जोर से प्याऊ 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 अपने गर्दन को ऐसे मोड़ मोड़ के करने लगे। जब उन्होंने कृष्ण की मयूर की आवाज सुनी, उनको देखा तो बेहोश हो गए, वो जमीन पे गिर गए कृष्ण की याद करते। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने और ब्राह्मण ने और दूसरे सेवक ने बहुत कोशिश की उनको जगाने की, कान में जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो आधे आधे होश में आ गए, आधे अति आनंद के भाव में रहे, मतलब पूरे होश में नहीं आए, हाफ अनकॉन्शियस हाफ कॉन्शियस। तो वो भाव में वो और रोल हो गए, तो कहते हैं कि बहुत कांटों में रोल हो गए वो, उनके त्वचा में बहुत घाव और कष्ट हुआ उनको, लेकिन वो तो बहुत त्रिया अवस्था में थे। फिर पूरे होश में आए और कीर्तन किया उन्होंने बहुत तरह से। फिर पेड़ों की बारी आई, पेड़ जितने भी थे उस समय, ध्यान से सुनिए आप लोग, पेड़ जितने थे वो कांपने लगे, थर 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 थर, सारी भुजाएं शाखाएं कांपने लगी, पत्ते कांपने लगे और पेड़ रोने लगे, कैसे? उनके हर पत्तों से वारुणी मध टपकने लगा। फिर कुछ पेड़ जो है वो आधे झुक के उन्होंने अपने फूल और फल भगवान को अर्पण किए, कुछ पेड़ जो है गिर के दंडवत किया भगवान को जमीन पर। कितनी अजीब बात है, देखो वृक्ष भी जीव है ना, सब 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 सचेतन सचेतन जीव है वृंदावन के, पत्थर भी वहां पर चेतन है, तो पेड़ की तो क्या कहें। सारे पेड़ थर थर कांपते हुए प्रणाम करने लगे, उनको आंखों में आंसू के रूप में उनके पत्तों से मधु वारुणी बहने लगी, सब फूल फल भगवान के चरणों में अर्पण किए उन्होंने। फिर खड़े हो गए, कांपने लगे अति आनंद में। इस तरह से भगवान आगे चले। फिर आगे चले तो फिर वो वहाँ से वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ से वृंदावन में वो पहले गए काम्यवन में, और काम्यवन की बड़ी लीला है। वो काम्यवन में बहुत भगवान के स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, और वहाँ पर भगवान ने कई सारे तीर्थों को प्रकट किया है, जैसे कि रामेश्वर, सेतुबंद, लंका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारे कुंडों तीर्थों को प्रकट किया वहाँ पर। विमल कुंड प्रकट किया है भगवान ने, विमल कुंड में स्नान किया, परशुराम ने बनाया और सब कुंडों में स्नान किया। चरण पहाड़ी पे आकर भगवान ने जहाँ पर बंसरी बजाई थी और पत्थर पिघलकर चरण चिन्ह निर्माण हुआ था, वहाँ पर दर्शन किया उन्होंने। सेतुबंध में स्नान किया, गया कुंड में स्नान किया। सबसे बड़ा जो तीर्थराज है काम्यवन का, विमल कुंड, उसमें स्नान किया, जहाँ पर गोपियों भगवान के 3 करोड़ पत्नियों के साथ भगवान ने रासलीला रचाया था। वो सब करके वो नंदगांव आए, नंदगांव में उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया, जिसमें त्रिवेणी संगम स्वयं आकर अक्षय तृतीया के दिन स्नान करते हैं। सारी नदियां विश्व की देवियां बनकर अक्षय तृतीया के दिन नंद सरोवर में स्नान करते हैं, उसको बाद में नाम पड़ा पावन सरोवर। वहां पर गौरांग महाप्रभु ने स्नान किया और अति आनंद का भाव विभोर होकर अनुभव किया और कीर्तन किया। फिर वो सबको जैसे ना कभी जगह कई जगह पर नाम का कीर्तन करते करते वो भाव विभोर होकर बहुत अति आनंद की अवस्था में पहुँचते थे। नंदगांव पहुँच गए एकदम नॉर्मल हो गए और सबसे इंक्वायरी करने लगे कि यहाँ पर यशोदा माई पिताजी माताजी और कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति है क्या यहाँ पर। तो किसी ने कहा कि एक गुफा है उसमें कुछ है आप जाइए। तो गौरांग महाप्रभु पूरा पहाड़ चढ़ के गए। कौन सा पहाड़? नंदीश्वर, नंदगांव का पहाड़, नंद भवन जिस पर है। और बहुत ढूंढ के उन्होंने एक गुफा ढूंढ के निकाली। उस गुफा के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष, एक बुजुर्ग माता और छोटा बालक नीला रंग का उसकी मूर्ति थी। उसको देखकर भाव विभोर होकर बेहोश हो गए। फिर जब उठे तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक वार्तालाप किया उन तीन मूर्तियों को हाथ लगा लगा कर। पहली मूर्ति नंद बाबा की थी, जैसे एक बहुत देर से परदेश से आया हुआ बालक पिताजी से कैसे बात करता है वैसे वो बात किया उन्होंने। फिर माताजी को हाथ लगा कर बात किया, फिर कृष्ण को छुपकर भी बात किया बहुत। तो सब ब्रजवासी नंदगांव वहाँ से इकट्ठा हो गए और वो देखने लगे गौर से और उनको मन में अनुभूति हुई ऐसी बात तो मैया से बाबा से कृष्ण ही कर सकते हैं। शाम सुंदर लौट के आए हैं। सब लोगों ने आनंद का अनुभव किया, कीर्तन में भाग लिया। फिर ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से नंद बाबा यशोदा माई और कृष्ण भगवान का विग्रह प्रकट किया। फिर वो स्थापन किया गया, बाद में बलराम जी की मूर्ति भी स्थापन की गई। फिर भगवान जो है नंदगांव से गिरिराज गोवर्धन पे आए और गिरिराज गोवर्धन पे आए तो सबको पूछने लगे। ऐसे कहते हैं कि जैसे वो गिरिराज में आए तो उन्होंने मानसिक गंगा में स्नान किया। मानसिक गंगा में स्नान किया उसके बाद में हरिदेव का दर्शन किया और हरिदेव का दर्शन करते उनको गोपाल जी की याद आई कि मैंने जब सनोडिया ब्राह्मण के घर पे भोजन किया था तो ये बात तो निकली थी, क्योंकि माधवेंद्रपुरी की जहाँ बात निकलती है वहाँ गोपाल जी की बात तो निकलेगी। तो उन्होंने कहा था हाँ मेरे गुरुदेव द्वारा प्रकट किए गए जो विग्रह हैं वो गिरिराज के ऊपर हैं। तो जैसे मानसिक गंगा में स्नान किया उनको उसकी याद आई, अरे हाँ उसने कहा था आपने कहा था। तो वो पूछने लगे कहाँ पर है कहाँ पर है। तो उसने कहा कि है उधर अन्नकूट ग्राम के जगह पर गिरिराज के ऊपर है उनका मंदिर, लेकिन वो मैं कैसे चढ़ूंगा गिरिराज के ऊपर। कृष्ण के रूप में तो उन्होंने बहुत लीला किया था उसके ऊपर चढ़ चढ़कर, लेकिन भक्त के रूप में आएंगे तो कैसे चढ़ेंगे। फिर मैं तो चढ़ नहीं सकता, मैं गोपाल जी स्वयं जानते हैं कि मेरा भक्त मतलब भगवान ही है वो, लेकिन मेरा भक्त जो आया है इतनी तीव्र तमन्ना कर रहा है दर्शन करने की। तो गोपाल जी ने एक चक्र चलाया, क्या किया, सब जगह अफवाह फैला दी कि तुर्की मुस्लिम जो है वो हमला करने वाले हैं। तो गोसाई लोग जो है जो रघुनाथ दास मतलब सॉरी वो गोपाल जी के जो पुजारी थे उन्होंने तुरंत मूर्ति को उठाया और भाग भाग के गए और गांठोली गांव गए। आप में से कोई गांठोली गांव गया क्या? एनीबडी वांट टू गांठोली? जाना चाहिए गांठोली गांव में। गांठोली गांव वो है जिसमें राधा कृष्ण एक बार ऐसे एकांत में बैठे थे मग्न होकर प्रेम में, तो सखियां पीछे से आती हैं और ललिता देवी पीछे से आकर कृष्ण का उत्तरीय और राधा रानी की चुंदरी को गांठ बांध देते हैं। फिर कुछ देर बाद में ये लोग होश में आते हैं और खड़े होते हैं तो वो उनको पता चलता है कि हमको बांध दिया गया है। तो वो शर्माते हैं, संकोच होता है उनको, देखते हैं अचानक सारी गोपियां प्रकट हो जाती है। तो वो तो आए थे एकांत में लेकिन समझ जाते हैं कि हमको लोगों ने पकड़ लिया है, सब जगह से घेर लिया है। तो जो शर्मा जाते हैं तो तुरंत सब गोपियां पिचकारी निकालते हैं गुलाल की और इतना रंग में उनको भिगाते हैं, इतना रंग भिगाते हैं कि एक कुंड तैयार होता है, गुलाल कुंड, बहुत ही विशाल और गहरा। जितना रंग चढ़ाया उनके ऊपर पिचकारी के रूप में सारा इकट्ठा हो गया और बन गया गुलाल कुंड। गांठोली गांव नाम है उसका, जहाँ पर गांठ लगाई गई थी। तो वो एक स्थान है ब्रज में जहाँ पर 12 महीने होली चलती है। अभी तो होली चल रही 44 दिन की, बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक, वो तो सब ब्रज में खेली जाती है। लेकिन ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर 12 महीने होली चलती है, नित्य लीला वहाँ पर होली की होती है। तो वो जगह पर गोसाई लोग गोपाल जी को लेके आए तो तब उस समय चैतन्य महाप्रभु हरिदेव का दर्शन करके गोपाल जी के बारे में सोच सोच के गिरिराज की परिक्रमा दे रहे थे, और भगवान ने गिरिराज का परिक्रमा पूरा किया और दोबारा गोविंद कुंड में स्नान किया, तो वहाँ पर खबर मिली कि तुर्की सैनिक आ रहे हैं, उसके भय से गुसाई लोग गोपाल जी को लेकर गांठोली गाँव गए हैं। तो ये बात सुनते ही वहाँ से भाग निकले महाप्रभु चैतन्य, हवा की गति से इतने आतुरता से भागे, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा के क्षेत्र से बाहर है वो गाँव, दीर्घपुर डीग के रास्ते पर है, तो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, दर्शन किया, और 24 आवर्स पर डे 3 दिन तक उन्होंने कीर्तन किया। सब ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, इतना अद्भुत कीर्तन, प्यास भूख नींद कुछ नहीं, इतना भाव विभोर होकर सबने कीर्तन किया। महाप्रभु जी ने कंटिन्यूस कीर्तन किया वहाँ पर। उसके बाद दोबारा खबर आई, कोई तुर्की वर्की को आदमी को आने वाला नहीं है, या ऐसा ही बात थी। तो गोसाई ने उन्हें कहा कि चलो वापस चलते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य ने उस जुलूस का नेतृत्व किया और कीर्तन करते करते गिरिराज तक पहुँचे, जहाँ पर गोपाल जी का मंदिर आज भी है, सफ़ेद रंग का, आपने देखा होगा परिक्रमा में, अन्नकूट ग्राम आनियोर गांव में। तो महाप्रभु नीचे खड़े हो गए और पुजारी उनको ऊपर लेके गए, मंदिर में स्थापन किया उनको। उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि भाव गोवर्धन के बीच में महाप्रभु जी ने कीर्तन किया, उस समय उनको कृष्ण का दर्शन हुआ, तो फिर वो उनको दर्शन करके बेहोश होके ब्रज रज में गिर गए। अब पूछने लगे होश में आकर, कहाँ गए। उसके बाद में वो सबको पूछने लगे दोबारा कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ हैं। कोई बता नहीं पाया। अपने साथ में आए ब्राह्मण को उन्होंने पूछा, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, मुझे भी पता नहीं, कोई बात ही नहीं करते उसके बारे में, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो एक तमाल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। अपने ध्यान में उन्होंने विशाल दिव्य अलंकृत राधा कुंड श्याम कुंड में राधा और कृष्ण को गोपियों को लीला करते हुए देखा, दर्शन किया ध्यान में। जब आंख खोली तो उनके नज़र में दो छोटे कुंड नजर आए, चावल के खेत के बीच में दो ऐसे कीचड़ से भरे हुए एक जलाशय दिखाई दिया उनको, क्योंकि उन्होंने दिव्य दर्शन किया था उनका। तो तुरंत वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई और वो छोटे छोटे दो कुंड में वो छलांग लगा स्नान करने लगे और जोरों से हरी बोल करके चलाने लगे। सब गांव के लोग भाग के आ रहे, सन्यासी, इतना तेजस्वी सन्यासी कीचड़ में क्यों कूद रहा है? तो उन्होंने कहा कि राधा कुंड और श्याम कुंड है, इसमें आपको दर्शन करना चाहिए। सारे सनोडिया ब्राह्मण, फिर बल्लभद्र भट्टाचार्य ने स्नान किया, सारे ब्रजवासियों ने स्नान किया। फिर उन्होंने आखिर में जाकर वहाँ पर सब लोगों को महिमा बताया राधा कुंड श्याम कुंड का, और फिर आगे जाकर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसका जीर्णोद्धार करने के लिए आदेश दिया। तो राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त तो हो गए थे, उसका प्रकट्य चैतन्य महाप्रभु ने किया है। हाँ, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके शिष्य हैं, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है। उसका नाम पहले कंकण कुंड और बंसी कुंड था, उसको बड़ा सुंदर बना के उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो आज आपके लिए उपलब्ध है। फिर वहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु जमुना पार करके आगे वाले वनों में गए, भद्र वन, बेल वन, भांडीर वन, जहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था, जहाँ लक्ष्मी ने तपस्या किया था बेल वन में, भांडीर में भगवान ने राधा से विवाह किया था। ऐसे सब वनों में दर्शन किया और वहाँ से वो पहुँचे गोकुल पहुँचे भगवान। गोकुल में पहुँचे तो उस जगह पर गए वो, जहाँ पर वो दो वृक्ष भगवान ने गिराए थे। वृक्ष तो वहाँ नहीं थे, उनका तो उद्धार हो गया पहले ही। उस स्थान पर जाकर चैतन्य महाप्रभु ने विशेष आनंद का अनुभव किया और फिर से वहाँ विभोर हो गए वो। जहाँ पुतला को मारा गया उस जगह दर्शन किया, जहाँ भगवान को बांधा गया वहाँ दर्शन किया, जितने भी लीला गोकुल में हुई है सब जगह का दर्शन किया भगवान ने। मधुवन गए, तालवन गए, हर कुंड में भगवान ने स्नान किया, एवरी प्लेस चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और कीर्तन किया। उसके लास्ट में इन गोकुल का और आगे के वनों का दर्शन करके फिर भगवान वृंदावन आए, और वृंदावन में वो जब आए सब लोग उनके पीछे पीछे आने लगे, बहुत लोग जमा हो गए और बल्लभद्र भट्टाचार्य को बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे कहते हैं कि 20-20 जगह पर उनको दिन में आमंत्रण आते थे भोजन के लिए। अभी वो जो सर्वेंट है उनका सेवक, वो कैसे 20 लोगों को हाँ बोलेगा, एक व्यक्ति को हाँ बोलेगा और 19 को ना बोलना है। हाँ बोलना एक को है, ना बोलना 19 को है, कितना मुश्किल काम। 19 लोग गालियाँ देंगे, एक आदमी शाबाशी देगा। तो बड़ी जनता इकट्ठा हो गई। तो थोड़े भगवान थोड़े से जनता को देख देख के थोड़े परेशान हो गए। उनको एकांत जगह भजन करने की इच्छा थी, क्योंकि पहली बार उनको जमुना जी का दर्शन हुआ। बीच में भी हुआ था, लेकिन अभी वृंदावन में आकर उनको जमुना किनारे बैठने के भजन करने की इच्छा थी। तो वो इमली तला गए। इमली तला वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रासलीला से अंतर्धान होकर उस पेड़ के नीचे बैठे थे और गोपियाँ उनको गीत गाते हुए ढूंढते ढूंढते आती हैं। राधा रानी भी आती है और वहाँ भगवान बैठकर राधा रानी का ध्यान करते हैं और उनके ध्यान करने से राधामय हो जाते हैं। सांवले रंग के भगवान जो है वो गोरे रंग के बन जाते हैं और अति दिव्य भाव का अनुभव करते हैं। तो राधा रानी वहाँ आती है, उनको स्पर्श करती है, तो फिर दोबारा वो गौर वर्ण छोड़ के फिर सांवले वर्ण में आ जाते हैं। वो लीला वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पहुँचते हैं, स्वयं कृष्ण है वो, लेकिन अभी गौर वर्ण में धारण करके, राधा रानी की कांति धारण करके वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर जमुना जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा जमुना जी से आती है तो बड़ा आनंद आता है उनको, बड़ी पसंद आती जगह। बोले मैं यहीं बैठ के भजन करूँगा और वहाँ पर दिन भर भजन करते हैं। और जब वो वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो गौर वर्ण के महाप्रभु सांवले रंग के हो जाते हैं। ऐसी उत्कट स्थली है वो, वहाँ सांवले रंग के कृष्ण गौर वर्ण के हो गए थे राधा के विचार से, और राधा के विचार में आए हुए कृष्ण का नाम करने वाले गौरांग महाप्रभु वहाँ पर सांवले रंग के हो गए थे। तो उस जगह पर उन्होंने कहा कि मैं यही रहूँगा, रोज यहाँ भजन करूँगा। और भोजन करने के लिए वो अक्रूर घाट जाते थे। अक्रूर घाट पता है ना आपको, जहाँ पर अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जब ब्रज में लेने के लिए आए थे, नंदगांव से गए और जब वृंदावन की सीमा पर आए वो, उस समय जमुना जी उनकी सीमा है, जमुना जी क्रॉस करें तो वृंदावन के बाहर जाएंगे, गोकुल जाएंगे, आप वहाँ से मथुरा जाएंगे। तो उस समय उस जगह पर अक्रूर जी ने पानी के नीचे वैकुंठ का दर्शन किया था। कृष्ण विष्णु बनकर दर्शन दिए और बलराम जी शेषशायी नाग बनकर दर्शन दिए। इस अद्भुत रूप में उन्होंने पूरे वैकुंठ का दर्शन किया जल के नीचे। और ब्रजवासियों ने उस समय गोलोक धाम का दर्शन किया। तो महाप्रभु को उत्कंठा थी कि अक्रूर ने क्या देखा, इसलिए महाप्रभु ने जमुना जी में छलांग लगाई अक्रूर घाट पे, और बहुत बहुत घंटे तक वो लौट के नहीं आए। बलभद्र भट्टाचार्य, सनोडिया ब्राह्मण और उनका असिस्टेंट सब लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे। बाद में उनको चिंता होने लगी, अरे पता नहीं कहाँ गए। तो उन्होंने भी छलांग लगाई पानी के नीचे। तो पानी के नीचे तल में बेहोश अवस्था में महाप्रभु पड़े हुए हैं। वो तो दर्शन कर रहे हैं वैकुंठ का, भक्त लोग नरक का दर्शन कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी क्या हुआ उनको, फॉर देम इट वाज लाइक डेथ, वर्स्ट सिचुएशन। तो बहुत देर से बाद में फिर उन्होंने महाप्रभु जी को उठाया वहाँ से और जल के बाहर लेके आए, उनको होश में लाया। तो उनका वो दिव्य अनुभूति का जो शरीर है वो देख, वहाँ पर एक राजपूत आया, कृष्णदास नाम का राजा था, वो वहाँ पर आया और ये महाप्रभु का दर्शन करके, अद्भुत दर्शन देखे, वो बहुत प्रभावित हो गया वो। और जब महाप्रभु जी होश में आए तो उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके साथ रहना चाहता हूँ, उनको कृपा कीजिए, अलाउ कीजिए। महाप्रभु जी ने कहा रहो। तो कि टोटल कितने हो गए, अभी 4 हो गए। तो रोज अक्रूर घाट में भोजन करते थे महाप्रभु जी चैतन्य, और इमली तला पे जमुना जी को निहारते हुए भजन करते थे, रोज नीले होते थे। तो उसके बाद में उन्होंने वहां पर प्रवचन करना शुरू किया इमली तला पे, कि कैसे हमको हमको समझना है कि हम शरीर नहीं है और कैसे भगवान का नाम ही कलयुग का सर्वोच्च उद्धार है, और भगवान का नाम जब कैसे करना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, सिद्धांत समझना कैसे चाहिए, माया के बहकावे से मुक्त कैसे होना है, इस पर उन्होंने इमली तला पे प्रवचन लिए। और वहां पर एक फिर अफवाह उठी कि कृष्ण का अवतार हो चुका है, जमुना जी में कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, बलभद्र स्वयं कह रहे हैं महाप्रभु को आके। देखो कितना अद्भुत चीज है, बलभद्र स्वयं भगवान को आके बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि कृष्ण का अवतार वो दर्शन जमुना जी में दे रहे हैं। तो भगवान बहुत डांटते हैं बलभद्र को कि ऐसे बेवकूफी बातें आपको नहीं करना चाहिए, और रोका उन्होंने जाके वहां से कि भाई जमुना जी के अंदर चल रहा है, भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को भेजा रिसर्च करके आओ, रिसर्च करके। तो उसका नतीजा निकला ये कि रात के समय पर एक मछुआरा जो है वो अपना बोट लेकर लैंटर्न लगा के मच्छीमारी कर रहा है। तो क्या लग रहा है उनको, जो मछुआरा है वो कृष्ण है, जो लैंटर्न है वो कालिया नाग के सर के ऊपर का मणि है, और जो बोट है वो कालिया नाग है उसके ऊपर वो कृष्ण बैठा है। तो फिर ये जब मालूम पड़ता है तो भगवान भरी प्रवचन के सभा के अंदर बताते हैं कि ब्रज में ऐसे बहुत सारे भूल भुलैया मिलेंगे, इसके बहकावे में भक्तों को नहीं आना चाहिए। तो एक घटना से उन्होंने सब जनता को समझाया कि ब्रज में अकेले रहना भक्तों के अलावा ये शहर में अकेले रहने से भी अधिक डेंजरस है, क्योंकि ब्रज में बहुत सारे ऐसे भूल भुलैया चलते रहते हैं। जहाँ पर कृष्ण का सबसे अधिक निवास है, माया भी बहुत अधिक प्रकटता से निवास करती है, उत्कटता से। कृष्ण इज सो मच प्रोमिनेंटली प्रेजेंट, माया ऑल्सो इज इक्वली प्रेजेंट ओवर देयर। पता है ना, अभी कृष्ण भी वही थे, कंस भी वही था ना, सब राक्षस भी वही आए थे ना, इतने मुंबई में नहीं आए थे, है ना। तो भगवान ने उस एक लीला से सबको समझाया कि कैसे ब्रज में भक्तों के संग में ही रहना है, प्रामाणिक भक्तों के संग में रहना है, और कोई ऐरे गहरे सिद्धांतों को सुनना नहीं है। कोई बोलेगा आपको, अरे हम आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं, देखो कितने एक्सट्रेसी में जाते हैं, शरीर का बंडल बन जाता है, पूरा गोल गोल घूमते हैं एक्सट्रेसी के अंदर, आइए हमारे साथ दिखाते हैं आपको। अरे ऐसे गुरुओं को मिलाएंगे आपको, आप खाली कृष्ण बोलो और उनकी आंखों की धार जो है वो रुकेगी नहीं 15 घंटे के लिए। ऐसे लोगों लोग मिलते हैं, बोले आपने देखा ही क्या है ब्रज में, अभी हमारे संग चलो, और गुफा में बाबा रहते हैं, आप कृष्ण का नाम लो, जो रोना शुरू करेंगे शाम तक रोते रहेंगे, आप लोग थक जाएंगे देखते देखते। ऐसे बहुत चमत्कार देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कृष्ण नहीं होते हैं, कृष्ण जहां पर भक्ति होती वहां होते हैं, चमत्कार में कृष्ण नहीं होते हैं। चमत्कार तो माया का एक जादू है, जो वो एक कला है, वो एक जैसे हम लोग डॉक्टर बने हुए हैं, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई हवाई जहाज बनाता है, कोई हवाई जहाज को उड़ाता है आकाश के अंदर, वो भी एक चमत्कार है, लेकिन वो साइंस है, वो भाव मटेरियल एनर्जी को यूज करके किया हुआ चमत्कार है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान उससे आप प्राप्त नहीं हो सकते आपको। तो महाप्रभु चैतन्य ने एक लीला के माध्यम से सबको एक बड़ा संदेश दिया है कि ब्रज में रहना है, अगर अकेले जाना है तो 3 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा जाना है तो भक्तों के संगी जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के ऊपर आप वहाँ रहेंगे बिना पर्पज के तो पूरी तरह से माया में फंस जाएंगे, और सारे प्रकार के विकल्प आपके मन में आएंगे, आपकी तरफ से अपराध होगा और आपका ब्रजवास भ्रष्ट हो जाएगा पूरा, उससे आप दिल्ली में अच्छे थे ऐसा हो जाएगा। तो फिर महाप्रभु ने बड़ा बोध दिया वहाँ पर लोगों को। और फिर उसके बाद में ये जब अक्रूर घाट में जब लीला हुई ना, तो बलभद्र बड़े परेशान हो गए, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर अभी वहां पहली बार नहीं था, वहां ना पहली बार जब गाय को देखा था तो जमीन पर गिर गए थे, आधे होश में आकर जमीन पर लोटपोट हो गए थे, थोड़े कांटे लग गए थे उनको, गिरिराज जी में गिरे, जगह जगह गिरते रहे। तो लेकिन सबसे बड़ा भयंकर गिरना हुआ था अक्रूर घाट पे, तब उन्होंने तय किया कि अभी यहां पर अति दिन रहेंगे तो और इनको बहुत कष्ट होने वाला है। तो उन्होंने लोगों का बहाना करके उनको समझाया कि महाप्रभु जी मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, मुझे रोज 20-20 लोग आके 100-100 लोग आके पुकारते हैं कि मेरे घर पे ले जाओ, मेरे घर पे, एक तो कम से कम उनका एक चरण मेरे घर पे रखवा ही दो बस आप। ऐसा होता है ना कि भाई मेरी एक माला तो उनको पहनने को मौका ही दे ही दो, मेरे दरवाजे की तरफ से एक बार तो उनको घुमा ही दो आप, चलो प्रसाद के लिए नहीं कुछ नहीं तो एक बार घर में एक चक्कर मारने तो दो कम से कम। इस प्रकार के वैरायटी ऑफ इन्विटेशंस तो किस किस को संतुष्ट करें हजारों की संख्या में। जब आप लोग संन्यास लेकर घूम रहे थे तभी भी यही हालत था वहाँ के लोगों का, हर व्यक्ति घर में बुला रहे हमारे घर में आओ हमारे घर में आओ, अभी एक व्यक्ति को किसी के घर, हाउ मेनी हाउसेज ही कैन गो। लेकिन मेन कारण था अखरूट घाट की घटना का, क्योंकि लोग तो उनको पहले से ही बुला रहे थे तभी वो इतने परेशान नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने अखरूट घाट की घटना को देखा कि कितने घंटे तक बेहोश रहे, तो उसके बहाने महाप्रभु जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हमको ब्रज से बाहर जाना चाहिए, ये आपकी अवस्था जो है ना बहुत विचित्र अवस्था है। तो महाप्रभु जी ने कहा जो आप कहेंगे वैसे मैं करूँगा। तो तुरंत उन्होंने ब्रज से बाहर जाने का निर्णय किया। जब बाहर निकले तो ब्रज के बाहर गए जा रहे थे तो एक ग्वाला आया वहाँ पर गाय को लेकर, बहुत सारे गाय को लेकर आया, गाय चरा रहा था, पता नहीं क्या लगा बीच में उसने मुरली निकाली और मुरली बजाने लगा। वो जैसे मुरली की आवाज़ सुनी वापस बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए बीच रास्ते में, ब्रज के बाहर भी आ गए अभी। वो चार लोग उनके पीछे हैं, कृष्णदास राजपूत और ब्राह्मण सोनोडिया और दो सेवक आए हुए हैं, चार लोग उनको हवा दे रहे हैं। अभी क्या करें, अभी कैसे करें, बीच रास्ते में बेहोश हो गए। उतने में वहाँ पर 50 पठान लोग आ गए घोड़े पर बैठ कर ऐसे शस्त्र लेकर, और वो क्या देख रहे हैं कि अरे ये चार ऐसे लोग उसके आजू बाजू में घूम रहे हैं, मतलब ये सुंदर तेजस्वी सन्यासी जो व्यक्ति है उसको इन्होंने लूट लिया होगा, उसका धनवान लूट के उसको कुछ धतूरा खिला दिया होगा, बेहोश करके गिरा दिया होगा और भागने के मूड में अभी होंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, इन चारों को लूटते हैं और ये पांचों का खून कर देते हैं। इस भावना से वो उनके पास में आते हैं और जोर से पूछने लगते हैं कि तुमने उसको मारा है, तुमने कुछ खिलाया उसको, बेहोश कर दिया उसको, तुम चोर हो, तुम्हारा भी वध कर देते हैं। तो सनोड़े वामन बहुत तेज थे, वैसे एकदम गुस्से से आगे आए, बोले तुम लोग जिस राजा के यहाँ पर नौकरी करते हो ना वहाँ पर मेरा दोस्त भी नौकरी करता है, अभी मैं एक सिटी मारूंगा तो 50 लोग आएंगे यहाँ पर, 100 लोग आएंगे, तुम सबको मार देंगे। राजपूत भी होश में अपने जोर जोश में आता है, बोलता है मैं अभी सैनिकों को लेकर आता हूँ, सबको आपको ख़त्म कर देता हूँ। तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं, वो बता रहे हैं उनको कि ये हमारे महाप्रभु चैतन्य हैं, इनको बार बार बेहोश होने की आदत है, वैसे ही हो गया वो, देखो आप खड़े रहो यहाँ पर कुछ देर, अपने आप होश में आ जाएंगे। ऐसे बहुत देर तक वाद विवाद होता है, उतने महाप्रभु जी होश में आ जाते हैं और स्वयं बोलते हैं हाँ मुझे ना मिर्गी की बीमारी है मैं जगह जगह फिर आके मुझे गिर जाता हूँ मैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथी हैं, ये परेशान बेचारे हो गए थे, तो वो भी आश्चर्य हो गया, अरे ये बोल रहे सही है, वो अचानक उठ गए। तो उतने में ये सब जो वाद विवाद हो रहा था, महाप्रभु जग गए तो 50 लोगों के नेता आ गया बात करने के लिए। वो थोड़ा धर्मशील व्यक्ति था, मतलब मुस्लिम था लेकिन उनका नेता भी था और दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और मुल्ला टाइप था वो। तो उसके साथ महाप्रभु जी की चर्चा शुरू हुई, तो उसने अपना मायावाद बोलना शुरू कर दिया। तो महाप्रभु ने कुरानों के रकातों को संदर्भ देते हुए उस मुस्लिम तथाकथित धर्मगुरु जैसा व्यक्ति था वो, होता है स्पिरिचुअल पर्सन, उसको समझाया कि कुरान के एंड में अल्लाह ने ये बताया है कि मैं व्यक्ति हूँ और तुम लोग उसको ही खाली छोड़ के बाकी प्रचार क्यों करते हो, क्यों अल्लाह शक्ति है और व्यक्ति नहीं है, उसको हाथ पांव नहीं है, उसके कुछ नहीं है, उसे मंदिर में मूर्ति रखते नहीं हो, केवल ऐसे ही पुकारते हो, क्यों आप लोग वो सत्य को छुपाते हो कि कुरान के एंड में भगवान व्यक्ति है, दिखाया है, सिंहासन में बैठे ऐसा वर्णन किया हुआ है उसका। तो वो आदमी एकदम प्रभावित हो गया और तुरंत महाप्रभु के चरणों में गिर गया। महाप्रभु ने उसको दीक्षा दिया, उसका नाम रखा रामदास। उसको देखकर 50 पठान भी सरेंडर हो गए, उन्होंने भी दीक्षा लिया महाप्रभु जी से। उसके बाद जिस राजा की नौकरी वह कर रहे थे उसका राजपुत्र देखने को आया, क्या हुआ, महाप्रभु को देखकर वो भी सरेंडर हो गया, उसने भी दीक्षा लिया। और ये करने के बाद में महाप्रभु जी की ब्रज की यात्रा की लीला समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। भक्ति रत्नाकर में बहुत विस्तार रूप में चैतन्य महाप्रभु का ये जो ब्रज यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। उसको एक घंटा में कैसे कर सकते हैं वर्णन, फिर भी महाप्रभु जी ने ब्रज में जाकर बहुत अनोखा लीला किया। सबसे ऊंची बात राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, नंदगांव के भगवान को प्रकट किया और सब लोगों को नाम के प्रति बहुत उच्च शिक्षा दिया। तो आज भी हम जाएंगे इमली तला में तो आपको महाप्रभु जी की मूर्ति मिलेगी वहाँ पर, जो इमली तला के नीचे बैठे हुए हैं, जमुना जी को निहार रहे हैं और जमुना जी को देख कर भजन कर रहे हैं। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए इमली तला बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर कृष्ण भी गौर वर्ण के हो गए थे और गौरांग महापुरुष श्याम वर्ण के हो गए थे। अद्भुत भजन स्थली है वो, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारने की स्थली है। वे वृंदावन है, वहाँ पर जमुना जी का निवास है और जमुना जी के सन्निधि में बैठकर भगवान ने भजन किया है। तो हमको भी चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है इसका सार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी भगवत्ता को छोड़कर आते हैं। समझो मैं अभी आपके गांव में आया समझो और कोई मुझे जानता नहीं है, फिर भी मैं 10-15 यहाँ वहाँ की बातें करके आपको बताऊंगा मैं डॉक्टर हूँ, मुंबई से आया हूँ, MBBS हूँ, ऐसे अस्पताल का फलाना हूँ, कैसे भी करके मेरा परिचय दूंगा आपको मैं। आप कितने भी अनजान होंगे मेरे बारे में, फिर भी मैं बहाना बना के आपको बताऊंगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। मतलब मैं कौन हूँ और मेरा जो मैं समझता हूँ कि मेरा गौरव है वो मैं बताऊंगा ही लोगों को जहाँ पर जाऊँगा तो। लेकिन भगवान जो सबसे बड़े गौरवशाली है हाँ, वो छोड़कर वो भक्त बनकर आते हैं। सच अ बिग सैक्रीफाइस, कैन इमेजिन। एक राजा है समझो और वो फकीर बन के आपके गांव में आता है, कितना बड़ा त्याग है उसका। वो सन्यासी बनने का मतलब क्या है? भिक्षुक बनने जैसा है, भिक्षा मांग माधुकरी मांगनी है। स्वयं भगवान जो है वो हमारा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए भिक्षुक बनकर आए हैं। देखो आप जो हर अवतार में अपना ऐश्वर्य दिखाते, राम भगवान, कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम, नरसिंह भगवान, वामन देव, हर अवतार में अपने भगवत्ता दिखाया उन्होंने कि मैं भगवान हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या करने का चमत्कार दिखाया उन्होंने। और ये अवतार में सबके सामने आज तक हाथ जोड़े हैं, प्लीज़ 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 आप मेरा कृष्ण का नाम लो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये उनका मंत्र था प्रचार का। गो आउट और लोगों को प्रचार करो, विनती करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण ही आपका सर्वस्व है, कृष्ण के बिना जीवन तुच्छ है, कृष्ण बिना ये जीवन तो मिछे है। तो ये भगवान का विशेषता है कि अपने से बिछड़े हुए जीवों को बचाने के लिए वो किस हद तक प्रयास करते हैं, सोचो आप। कहते हैं अरे चलो आपको कोई भी भजन करने में, आपको तपस्या करने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई नियम पालन करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ ज्ञान समझ सकते हो, कम से कम मेरा नाम ले लो। आपकी पतित अवस्था को देखते हुए मैं मेरे सारे ऐश्वर्यों को, सारे गुणों को, मेरे सारे व्यक्तित्व को मैं मेरे नाम में अर्पण करता हूँ, नाम को ऐसा बना देता हूँ, और भी आसान, इतना सब करने के बाद भी ऐसा बना देता हूँ कि बच्चा भी ले सकता है, सबसे बड़ा अनपढ़ भी ले सकता है, औरत भी ले सकती है, आदमी भी ले सकता है, राक्षस भी ले सकता है, अच्छी जगह ले सकता है, गंदी जगह ले सकता है, हाँ, कोई जाति ब्राह्मण हो या शूद्र हो भी ले सकता है, कोई विदेशी हो या देशी हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, कोई रंग भेद वाला हो, कोई देश जाति भेद वाला हो, को हर व्यक्ति, कोई भी ऐसी अवस्था, रोगी ले सकता है, अच्छा स्वास्थ्य वाला ले सकता है, सुंदर ले सकता है, कुरूप भी ले सकता है, नाटा ले सकता है, लंबा भी ले सकता है, कोई ऐसा नहीं कि अरे भाई एक स्थिति ऐसी है कि नहीं ले सकता है, ऐसा कोई स्थिति रखा ही नहीं उन्होंने, ऐसा प्रोसेस बनाया कि किसी भी अवस्था में वो व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, ऐसी प्रक्रिया बनाई, जो कोई बहाना नहीं बनाएगा कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, कि देखो मेरा ऐसा ऐसा है ना, क्या करूँ, ऐसा ऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बनाया, सर्वव्यापी। कि कोई ये बोल नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता। आप बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, ये आप बोल सकते हो, नहीं करना चाहता ये बोल सकते हो आप, लेकिन नहीं कर सकता ऐसा नहीं बोल सकते आप। इतनी सुंदर, इतनी आसान, इतनी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया उन्होंने हमारे लिए प्रकट की। और क्या समझना जरूरी है इसमें कि ये गौलोक की संपत्ति है। गौलोक जो है भगवान का धाम, उसका सार क्या है? प्रेम, प्रेम ही है वो, प्रेम का ही धाम है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। जो भी है संपृक्त प्रेम है, ऐसा भी नहीं कि साधारण प्रेम है, अनन्य प्रेम है उधर। तो गौलोक का जो प्रेम धन है वो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के रूप में आपके लिए प्रकट किया है, जो केवल गोपियों को रास में अनुभव करना मुमकिन था। जो सर्वस्व त्याग करने वाली सर्वोच्च गोपियां थी भगवान की, सर्वश्रेष्ठ भक्त थी, उनको भी दिन रात उन्होंने प्रकट नहीं किया, केवल रास में वो अति उत्कट आनंद जो है, परमोच्च स्थिति का आनंद, आनंद तो सब जगह दिया उनको, लेकिन रास में परमोच्च आनंद दिया। एक ब्रह्मा की रात उसमें, एक रात में समेट लिया उन्होंने, एक रात ब्रह्मा की पूरी ये दुनिया की एक रात में समेट लिया उन्होंने, उतना समय तक उनको रास का आनंद दिया उन्होंने। वो जो दिव्य आनंद रास इलाका है, जो गौलोक का आनंद है, जो पृथ्वी पर रास के माध्यम में प्रकट किया उन्होंने, और किसी को अन्य लोगों को उसमें प्रवेश नहीं दिया उन्होंने। यशोदा माई गई क्या उसके अंदर? सीधा माँ गया क्या? मधुमंगल गया उसके अंदर? नहीं गया कोई। गाय गई क्या? कोई सखा लोग गए थे उसमें? कोई नहीं गए, केवल गोपी, मतलब एकदम गिने चुने लोगों को उसको अनुभव कराया। और वो जो परमोच्च आनंद था वो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के रूप में जन जन सामान्य को प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। जस्ट इमेजिन, इतनी कृपा कोई नहीं कर सकता है। अरे कृष्ण स्वयं जब थे तो इनके इतने परमोच्च भक्त थे, यशोदा माई थी, नंद महाराज थे, सीतामा सखा उनका, परमोच्च सखा, परम सखा उनका, उसको भी प्रवेश नहीं दिया उन्होंने, मतलब कितना डिवीजन किया उसके अंदर उन्होंने। वो जो आनंद है वो हम जैसे पतित लोगों को उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से दिया। तो जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन में दिल से नाचता है और दिल से मंत्र बोलता है, उसको वही आनंद का अनुभव होता है जो गोपियों को रास में अनुभव होता है। तो तब हमको समझ में आता है कि महाप्रभु की कृपा कितनी महान है, कि जिस व्यक्ति के हम योग्य नहीं हैं, जिस वस्तु के हम योग्य नहीं हैं, उस वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि सबसे पतित व्यक्ति भी उसको प्राप्त करने के योग्य बन जाए। क्या कंडीशन है? एक ही कंडीशन है, श्रद्धा से भाग लो, केवल श्रद्धा मात्र, श्रद्धा मात्र मूल्य, श्रद्धा का मूल्य देकर आप ये नीलमणि खरीद सकते हो। और वो जब आप दिल से इस प्रक्रिया को अपनाओगे तो गोपियों को जो आनंद प्राप्त हुआ वो हमारे पतित अवस्था में भी अनुभव कर सकते हैं। ये महाप्रभु की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। सो नामुमकिन है वो उन्होंने मुमकिन करके सबको बांटा। और हम लोग भी आज जितना उत्साह से आप भाग लेते हो हरिनाम संकीर्तन में, उतना आपको आनंद का परिचय होने वाला है। और यही प्रक्रिया न केवल आपको यहाँ वो आनंद देगी, लेकिन यही प्रक्रिया आपको गौलोक तक लेके जाएगी, जहाँ पर हर रोज इस आनंद का सागर प्रस्तुत है। वहाँ पर वो लीला, वो आदान प्रदान, वो प्रेम वहाँ तक आपको पहुँचाएगी ये प्रक्रिया। तो गौलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, हमको रति नहीं है उसके प्रति दुर्भाग्य से, लेकिन हमारे लिए अवेलेबल है वो। वो जब यहाँ पर हम लोग अपनाते हैं तो दुनिया में वर्षा होती है, फल फूल खिलते हैं, आपको भोजन मिलता है, पृथ्वी हमको अन्न देती है। जब हरिनाम कीर्तन कोई करता है तो कुछ भक्त लोग कहीं कर रहे हैं, अभी छोटी मोटी संख्या में कर रहे हैं, इसलिए सारी जनता को यहाँ पर भोजन मिल रहा है। अभी भी वर्षा होती है क्योंकि कहीं ना कहीं भक्त लोग कम संख्या में है, लेकिन भक्त भजन कर रहे हैं भगवान का। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है हरिनाम के ऊपर, ना कोई योग है, ना कोई कर्मकांड है, ना कोई त्याग है, ना कोई सिद्धि है, ना कोई ज्ञान ऐसा है जो प्रकृति पद्धति ऐसी कोई है जो नाम के साथ मुकाबला कर सकती है, ना कोई ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पूर्व संचित को नष्ट कर सकती है। हम दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे, उससे ही इधर कर्म के यहां वहां थोड़े थोड़े लाभ मिलते हैं, लेकिन जड़ से कर्म नष्ट नहीं होते, स्वभाव नहीं बदलता, पाप कर्मों का फल का सिलसिला जारी रहता है। केवल हरिनाम संकीर्तन ऐसी एक ही प्रक्रिया है जिससे बीज रूप में पाप और पाप करने की प्रवृत्ति और पाप कर्म ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्म नंबर वन पे है जो तुरंत नष्ट होता है, उसके बाद पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, उसके बाद पाप का बीज जो होता है वो नष्ट होता है, और ये नष्ट होते ही प्रेम का बीज निर्माण होकर प्रेम का वृक्ष फैलता है हृदय में। कितनी शक्ति है नाम संकीर्तन में, लेकिन हम लोग श्रद्धा से करते नहीं हैं। हम लोग को हीरा मिल गया है लेकिन हमारे पास अभी तक सोने की अंगूठी नहीं है, इसलिए हमने उसको कबर्ड में रखा हुआ है, यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। तो हीरे की अंगूठी, हीरे की सोने की अंगूठी मतलब क्या है? श्रद्धा, चार नियमों का पालन, वैष्णवों की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, ग्रंथों का अध्ययन, प्रसाद का प्रसाद ही केवल खाना, ये सोने की अंगूठी है। इस सोने की अंगूठी में जब हरिनाम आएगा तो आप लोग उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं जो गोपियों ने किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग, गौर पूर्णिमा आ रही है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन बहुत नज़दीक आ रहा है, तो सब लोगों को ये नाम संकीर्तन की महिमा समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर आने की। यहाँ पर जितने भक्त हैं ना, उसके करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों गुना भक्त गोलोक में रहते हैं, और वो शुद्ध भक्त हैं, सब भगवान के चहेते हैं, शुद्ध समर्पित जीव हैं, वो प्रेम में संपृक्त जीव हैं, बहुत दिन रात भगवान की सेवा करते हैं। कोई यहाँ पर आके भगवान को तड़पने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने पास हैं उससे अधिक चिंता वो जो लोग पास नहीं हैं उनके करते हैं। आप भी देखो, आपके घर में तो चार पुत्र हैं, एक पुत्र झगड़ा करके घर छोड़ गया है, तो सबसे अधिक विचार किसका करते हैं? पिताजी जो छोड़ के गया उसका करते हैं। बाकी तीन लोग बोलते हैं, पापा हम लोग नहीं क्या, हम हमारा विचार ही नहीं करते हैं, खाली उसके बारे में बात करते रहते हैं। मतलब बेटा तुम तो मेरे पास ही हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, वो जो खो गया ना उसको भी लाना है ना। जब लौट के आता है तो पापा बड़ी पार्टी देते हैं सब लोग को बुलाकर, तो तीन बेटे बोलते हैं, पापा हमारे लिए कोई पार्टी नहीं दी आपने। बोले तुम तो मेरे ही हो, मेरे ही पास, सब कुछ तुम्हारा है, वो खोया हुआ था वो वापस आया ना, इसके लिए पार्टी दे रहे हैं। ये पिता का मन ऐसा होता है, वो जितने उनके पास में हैं अनंत संख्या में, उससे कम संख्या में जो खोए हुए हैं उनकी वो चिंता ज़्यादा करते हैं, और अपना भगवान का पोजीशन छोड़ के भक्त बनकर नीचे आते हैं, आपके बीच में घूमते हैं, वो हरिनाम बांटकर आपको ले जाना चाहते हैं। कितनी कृपा है भगवान की, करुणा जो है ना, करुणा वो इसमें प्रधान है, बाकी ऐश्वर्य दूसरे दर्जे पर है, करुणा प्रथम दर्जे पर है। तो ये करुणा को हमको प्रतिसाद देना चाहिए, भगवान को रिस्पॉन्स देना चाहिए, अरे आपने हमारे लिए इतना किया, गोलोक छोड़ के यहाँ पर आकर इतना महान धन जो है एक आसान तरीके से हमको आपने दे दिया, हमको तो कम से कम लेना चाहिए उसको, वो भी लेने के लिए हम कंजूसी कर रहे हैं। तो दिल से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। गौरांग महाप्रभु का अवतार कभी परिपूर्ण हो जाएगा जब हम उस अवतार जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य को हम लोग पूर्ति करेंगे, तो उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा, उनका अवतार सफल हो जाएगा। वो तो परम सफल अवतार ही, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, लेकिन हमारे इस प्रक्रिया को स्वीकार करने के बाद वो परम सफल हम लोग अपने जीवन में करेंगे, उसमें हमारा हित है। इसलिए हमको भगवान के नाम का जप जो है बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, और इस प्रक्रिया को इसी जन्म में अपना कर परिपूर्ण करके इसी जन्म के अंत में हमको भगवत धाम जाना है, और दो चार जन्म लेके आपको वेट नहीं करना है यहाँ पर कि बहुत लंबा काम है, दो चार लाइफ में डिवाइड कर देंगे उसको, हाँ ये सोचना नहीं आपको, बहुत ज़िंदगी ख़राब होने वाली आगे, पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, युद्ध हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, भोजन के ज़्यादा अधिक सुरक्षा में खर्च हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, हर साल में सुरक्षा में खर्च बढ़ रहा है, और लोगों को रोटी और पानी देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आतंक इतना बढ़ रहा है, वो भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हो, आकाश से वर्षा नहीं हो रही है, गलत टाइम पे वर्षा हो रही है, हाँ सब फसल नष्ट होती जा रही है, क्या देखो कितना विपरीत जीवन आया है। इतनी गर्म भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठंडी गर्मी पड़ रही है, दिन रात कभी भी वर्षा होती है, जब नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा होती है, ना चाहिए वहाँ पर होती नहीं है, कुआं में पानी नहीं है, जानवरों को काट के खाया जा रहा है, गायों को मार रहे हैं। तो हमको देखना है कि ये जीवन इतना आसान नहीं है और आगे जाकर और ख़राब होने वाला है, उसके पहले ही भगवान का नाम लो और चलो यहाँ से निकलो, इसी में भगवान की इच्छा पूरी होगी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।